हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। एक दूसरा बड़ा सा अंधेरा कमरा था और वहाँ कुर्सी पर कोई बंधा हुआ बैठा था और वो लगातार हिल रहा था और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके इस तरह से हिलने डुलने की वजह से वो कुर्सी भी हिल रही थी, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा कसकर बंधा हुआ था कि उन रस्सियों से आज़ाद होना तो दूर, उसका हाथ या पैर हिल भी नहीं पा रहा था और मुंह पर भी काला कपड़ा डाला हुआ है जिससे कि उसका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कपड़ों और शरीर से देखने पर वो कोई लड़की लग रही थी। शायद उसका मुंह भी बंधा हुआ था जिसकी वजह से वहां पर कुछ आवाज़ तो आ रही थी उसके मुंह से निकलती हुई, लेकिन वो पूरी तरह से कुछ भी बोल या चीख नहीं पा रही थी। लेकिन वो कुर्सी पर बंधी हुई लड़की लगातार अपनी पूरी ताकत लगाती हुई उस कुर्सी को इधर उधर हिला डुला रही थी और तभी उस जगह पर किसी के चलकर आने की आहट हुई और वो किसी के जूते की आवाज़ थी जो कि शायद दरवाज़ा खुलने के बाद से हुई थी, क्योंकि उस लड़की को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उसकी आंखों पर कपड़ा है और उसका मुंह भी बंधा हुआ है, लेकिन उसके कान खुले हैं तो वो एकदम चौकन्नी होकर सब कुछ सुन रही है। तभी उस लड़की के कानों में किसी की एकदम गुस्से से तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। इसे इतने आराम और सहूलियत से बांधकर क्यों रखा है? तुम लोगों को पता है ना इसने क्या करने की कोशिश की है, और उसकी सज़ा देने के लिए मैंने इसे यहाँ पर रखने को बोला था, लेकिन तुम लोग तो लगता है इसकी खातिरदारी कर रहे हो अच्छे से। चलो अभी के अभी इसके चारों तरफ आग लगा दो, और ध्यान रखना ये आग इसकी कुर्सी में अभी नहीं लगनी चाहिए। वो शख्स कोई और नहीं, आदित्य है, जो कि बहुत ही गुस्से में अपने पेट में एक हाथ डालकर वहां पर खड़ा है और उसके सामने काफी सारे लोग सर झुकाकर खड़े हैं, जिसमें कि अरविंद और उसकी सिक्योरिटी टीम के सारे लोग हैं। इसके अलावा और भी कुछ लंबे चौड़े से गार्ड वहां पर नजर आ रहे हैं जिन्हें कि आज शायद पहली बार ही देखा हो। आदित्य के हाथ और चेहरे पर चोट और खरोच के निशान हैं, जिनमें से कुछ एकदम ताज़ा जख्म के निशान लग रहे हैं और कुछ का खून थोड़ा सा सूखकर काला पड़ चुका है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक हालत में तो नहीं लग रहा है। और उसके चेहरे का वो गुस्सा उसकी पर्सनालिटी को और ज्यादा डरावना बना रहा है। उसकी वो गुस्से से लाल आंखें, ऐसा लगता है जैसे अभी उसकी आंखों से आग की लपटें निकलेंगी और सामने कुर्सी पर बंधी वो लड़की उसमें जलकर राख हो जाएगी, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए ये कहा। और उसकी बात सुनकर सभी तुरंत ही वैसा करने लगे जैसे कि उसने अभी अंदर आते ही कहा था। कुछ ही देर में उन लोगों ने उस कुर्सी के चारों तरफ लकड़ी का एक घेरा बनाते हुए उसमें तुरंत ही आग लगा दी और तुरंत ही वो आग गुलाई से लग गई। वो आग लगते ही उस लड़की को तुरंत ही अपने आसपास गर्माहट महसूस हुई और बिना मुंह खोले ही उसके मुंह से अजीब तरह की आवाज़ निकल रही है और वो लगातार कुर्सी को इधर उधर हिलाने की कोशिश कर रही है। आदित्य ने उसे तरफ बढ़ाकर उसे आग के घेरे का एक गोल चक्कर लगाते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं और अब तुम यहां से जिंदा बचकर भी नहीं निकलोगी, क्योंकि पहले ही बहुत परेशान कर लिया है तुमने मुझे और हद पार कर दी तुमने। मेरी सोना को जान से मारने की कोशिश की और ऐसा सोचने वाले को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता, और तुमने तो ऐसा किया। ये बात सुनकर उस लड़की का गला एकदम ही सूख गया। पहले ही उसने वो सब कुछ सुना और उसके बाद अब आग की गर्माहट भी उसे फील हो रही है, और उसे पर आदित्य कैसे धमकी भरे शब्द, चेहरे से कपड़ा हटाओ, इसके मरने से पहले मुझे देखना है आखिर कौन है ये जिसे अपनी जान प्यारी नहीं थी और इतना रिस्क लेकर इसने ये सब कुछ किया। आदित्य ने अपने हेड बॉडीगार्ड अरविंद की तरफ देखते हुए ये बात कही तो अरविंद ने आगे आकर उसके चेहरे से वो कपड़ा हटाया और आदित्य दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ा हुआ था, लेकिन फिर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा उसकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो गईं, क्योंकि उसे शायद उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए तो उसे यकीन भी नहीं हुआ कि जिसे वो देख रहा है सच में वही लड़की उसके सामने वहां पर बैठी हुई है, और उसके मुंह से एकदम ही निकला, नताशा तुमने ये सब कुछ किया, लेकिन कैसे, कब, और तुम तो यूएसए में थी ना, और तुम्हारा इलाज चल रहा था, तुम यहां वापस कब आई? आदित्य काफी ज्यादा सदमे में है और साथ ही ये भी सोच रहा है कि वो नताशा की आवाज़ कैसे पहचान नहीं पाया, और जब वो उसे कॉल और मैसेज पर परेशान कर रही थी तब उसका ध्यान एक बार भी उसकी तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर तब उसे इस बारे में जरा सा भी अंदाज़ा हो जाता तो वो पहले ही सब कुछ रोक सकता था, और सब कुछ इतना एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाता। नताशा के बाल पूरे बिखरे हुए हैं, उसके पूरे माथे पर पसीना है उसका पूरा मेकअप चेहरे पर बहकर एकदम खराब हो चुका है। गर्मी और पसीने की वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही क्योंकि उसके मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ है। डर की वजह से उसकी आंखें एकदम पीली भर चुकी हैं और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं क्योंकि वो चिल्ला भी नहीं पा रही। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी भी वक्त वो भी उस आग के लपेटे में आ जाएगी, और उसी डर में वो लगातार अपना सिर हिला रही है। उसे ऐसी हालत में देखते हुए आदित्य बहुत ही अजीब तरह से हंसा और एकदम उसके सामने आकर आग के दूसरी तरफ खड़ा होता हुआ बोला, मेरा ये रूप नहीं देखा होगा ना कभी तुमने, बताओ इस रूप से भी उतना ही प्यार करती हो क्या तुम? अभी भी प्यार आ रहा है मुझ पर या फिर नहीं? वैसे मुझे कहीं नजर तो नहीं आ रहा, सिर्फ डर नजर आ रहा है इन आंखों में, खौफ। एकदम लाचारी भरी आंखों से वो आदित्य की तरफ देख रही है, उसकी आंखों से आंसू लगातार निकलते जा रहे हैं। तभी आदित्य ने अरविंद को इशारा किया और अरविंद ने उसका मुंह खोल दिया, क्योंकि आदित्य को अपने सवालों के भी जवाब चाहिए। वो इस तरह से सीधे ही उसे मारना नहीं चाहता, भले ही उसे इस वक्त नताशा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसने ये सब इतना बड़ा खेल खेला और पूरी तरह से लगभग अपने जाल में फंसा ही लिया था, और यहां तक सुनैना को तो उसने पूरी तरह जान से मारने की तैयारी कर ली थी। अरविंद ने जैसे ही उसके मुंह पर बंधी हुई वो पट्टी खोली, वो एकदम ही गिड़गिड़ाते हुए बोली, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी बीवी को कभी भी मारना नहीं चाहती थी, मैं बस तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी। मुझे पता है तुम उसे लेकर बहुत पजेसिव प्रोटेक्टिव हो, और मुझे लगा था कि तुम उसकी जान बचाने के लिए मेरी बात मान लोगे और उसे तलाक दे दोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि। इतना बोलते हुए वो रुक गई जब उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, जो कि घूरते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। और उसकी बात पूरी करते हुए आदित्य बोला, हाँ तुम्हें कहा, पता था कि पैसा इस तरह से पलट जाएगा, और जो पूरी खेल की बागडोर तुम्हारे हाथ में थे, तुम खुद ही उसे खेल का शिकार बन जाओगी, और ये सब पता होता तो मुझे नहीं लगता है कि तुम इतनी बेवकूफी करती, है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं?
सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी, मैं हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर चली जाऊंगी, मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी, बस प्लीज अभी मुझे मेरी जान बख्श दो और ये आग बुझा दो, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है आग और धुएं से, प्लीज प्लीज आदि, मैं सच में बहुत बीमार हूँ, अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हूँ, और उसी में पता नहीं क्यों मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने ये सब किया उस लड़की के बहकाने पर। इतना बोलते हुए वहां कुर्सी पर बंधी हुई नताशा एकदम ही खांसने लगी और उसकी आंखों में अब वो जुनून और पागलपन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है जो कि अभी कुछ घंटों पहले तक था। आदित्य बहुत ही बेपरवाही से उसे घेरे के किनारे चलता हुआ बोला, देखो तुम्हें मैं आज से नहीं बहुत पहले से जानता हूँ, और पहले भी तुम इस तरह की बेवकूफ़ी कर चुकी हो, वैसे उस वक्त तो तुम खुद ही कूद कर जान देने के लिए तैयार थी, तो फिर अब क्या हुआ, आखिर लोग तो वैसे भी प्यार में मर जाते हैं, तो फिर जब प्यार किया तो जान देने से क्या डरना?
नहीं नहीं प्लीज, मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं उसे वक्त भी तुम्हें बस डराने धमकाने के लिए वो सब कर रही थी, और आज भी मैंने ये सब कुछ, मैं तुम्हारी बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, प्लीज मैं सच बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो मेरी आखिरी गलती समझकर।
नो वे, आदित्य सिंघानिया अपनी की हुई गलती फिर से नहीं दोहराता, और तुम्हारी जैसी साइको का क्या भरोसा, इसलिए तुमने चाहे जिसके भी कहने पर यह किया हो, तुम्हारे में खुद भी इतनी अकल होनी चाहिए, और आखिर प्यार में कभी कभी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है ना, तो बस समझ लो वही हो रहा है तुम्हारे साथ, उसकी तरफ गुस्से से घूर कर देते हुए कहा, और वो बिल्कुल भी उसे छोड़ने या माफ करने के मूड में नहीं लग रहा। इतना बोलते हुए उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा और कहा, ये आग को बुझनी नहीं चाहिए, ये अगले 24 घंटे तक इसी तरह जलती रहे, और इसके बीच ये लड़की भी बैठी रहे, देखता हूँ फिर क्या होता है इनका और उनके प्यार और पागलपन का, अकल ठिकाने आएगी या फिर जान जाएगी। आदित्य की बात सुनकर उसके सिक्योरिटी गार्ड ने हाँ में अपना सिर हिलाया, और फिर दो तीन लोग मिलकर वहाँ कमरे के कोने में रखी हुई लकड़ी और पेट्रोल उठाकर वहाँ पर लाने लगे और उसे आग पर डालने लगे, जिससे कि वो और ज़्यादा ऊंची लंबी उठ रही है, और उसे घेरे के बीच में बैठी हुई बाकी की हालत उस आग की बढ़ती और गर्मी की वजह से बहुत ख़राब हो रही है। उसने तेज़ आवाज़ में चिल्लाया,
नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दो मुझे, एक आखिरी बार, एक आखिरी मौका, मैं मर जाऊंगी यहाँ पर, मुझे बहुत घुटन हो रही है, प्लीज़।
तुमने सोचा है मेरी सोना को कितनी घुटन हुई होगी उस धुएं में, और उसके बाद उसे पानी में जो उसके सिर तक आ गया था, और वो लगभग उसमें डूब ही गई थी, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा, क्या तुमने एक बार भी सोचा था उसके बारे में, उसे कुछ हो जाता तो? नहीं, तब तो अपनी सनक के आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखा, और अब अपनी जान पर बनी है तो जान की भीख मांग रही हो, दूसरों की जान की कोई कीमत नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों की नज़र में, तो फिर मुझे भी तुम्हारी जान की नहीं पड़ी, मरो या जियो, बोलकर आदित्य तुरंत ही वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन वो दरवाजे से बाहर निकल पाता उससे पहले ही उसे दरवाजे पर खड़ा हुआ कोई नजर आया और उसने एकदम से कहा, नहीं आदित्य, तुम इनके जैसे नहीं हो, इसलिए ये सब नहीं कर सकते। छोड़ दो इसे, जाने दो। क्रमशः, नहीं नहीं, आप लोगों का बीच में कोई भी एपिसोड नहीं छूटा है। अभी जो कुछ भी आप इस एपिसोड में देख रहे हैं वो सब कुछ अभी हो रहा है, लेकिन कुछ हुआ है जो कि फ्लैशबैक में, जिसकी वजह से हमारे आदित्य और सुनैना बच पाए, वो आप लोगों को अगले एपिसोड में पढ़ने को मिलेगा। कीप रीडिंग।